इंटरेस्टिंग है कि से आपने 2020, मैं टाइम में थोड़ा भूल गया, जब आपको पता लगा कि अब आपको इस तरह से स्टॉक्स को पिक करना है, वो था
2017-18 में।
2017-18। अब उसके बाद आपने पिक करना शुरू किया, हाँ यार जैसे आप रेलवे का स्टॉक उठा लिया या
बीएससी
बीएससी का
था।
उठा लिया, देन व्हाट चेंज, किस तरह से वो बदल गया आपका 3 साल का और आगे का करियर स्टॉक मार्केट
उसका चेंज हुआ अर्ली 2019, 2 जनवरी 2019 को
में?
मेरे फादर की एक्सपायर हो गए,
ओ
तो वो एक मेरा सेटबैक था। फिर उनका जब 10वें वाले दिन हम हरिद्वार गए, तो पीछे से घर में चोरी हो गई, सारा गोल्ड जितना घर में था वो चोरी, 18-20 लाख का गोल्ड था
ओ
वो
माय
भी
गॉड,
सारा चोरी हो गया। तो वो एक सेटबैक लगा, इधर से डेथ का, इधर से घर में चोरी का। तो 6-8 महीने के लिए तो ट्रेडिंग छोड़ ही दी, क्योंकि
ऑब्वियसली
दिमाग सारा
हाँ,
उसी में
उसी
था।
को एज ए पर्सन एट दैट, वो 5-6 महीना फिर तो आप लॉस्ट हो गए पूरा।
FIR करवाई, रोज पुलिस स्टेशन के ही चक्कर लग रहे हैं,
वो मिला वापस पैसा?
पैसा कुछ वापस रिकवर नहीं।
तो आपको ये दो नुकस वो मुश्किलें आपकी लाइफ में इकट्ठे से आई।
तो इकट्ठे ही आए 6-8 महीने के लिए, तो फिर बिल्कुल ट्रेडिंग की तरफ ध्यान भी नहीं गया। फिर उसके बाद 8-1 महीने के बाद शुरू की होगी ट्रेडिंग, तो कैपिटल तो मेरी इकट्ठी हो चुकी थी काफ़ी टाइम, अब तो 2.5 से 1 साल हो गए थे जॉब करते हुए। तो दोबारा से ट्रेडिंग चालू की, अब थोड़ा सा अमाउंट भी ज़्यादा और थोड़ा फंडामेंटल भी अब अच्छी तरह पता चल गए थे, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी अब तक थोड़ा बहुत आ गया था, लेकिन अभी भी मुझे टेक्निकल ज़्यादा नहीं पता था, सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस तक ही पता था। फिर उसके बाद उससे शुरू किया, फंडामेंटली गुड स्टॉक ही देखता था मैं, मिड कैप में भी हो तो लेकिन गुड हो,
जो आप फाइनेंशियल जिस हिसाब से आप देखते हो।
हाँ फाइनेंशली साउंड हो, उनमें करता था ट्रेडिंग भी। पहले तो जैसे 6-6, 8-8 महीने के लिए भी रख लेता था, अब मैंने थोड़ा सा पोजिशनल कि 15 दिन महीना इससे ज़्यादा नहीं रखूँगा।
तो फंडामेंटल के साथ रजत, आप टेक्निकल्स या प्राइस एक्शन या इंडिकेटर्स कुछ ऐसा कि मैं प्राइस मूवमेंट पे भी ध्यान दूं?
अब तो बहुत सारे हैं, लेकिन उस टाइम तो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ही करता था कि फंडामेंटली गुड स्टॉक है तो ये अब सपोर्ट पे आ गया।
कितने महीने का सपोर्ट या कितने साल का या कितने दिन का?
मैं सिर्फ वो डेली या वीकली पे लगाता था।
अच्छा, तो फिर आप इंट्राडे कर रहे थे या आप,
नहीं, मैं स्विंग के लिए करता था, 15 दिन के लिए, महीने के लिए,
और आप डेली, आप वीकली स्विंग, वीकली
वीकली भी सपोर्ट देख
सपोर्ट
लेता, मैं दोनों को मैच कर लेता था डेली और वीकली पे।
ये एक्चुअली इंपॉर्टेंट, आई थिंक वी शुड टॉक अबाउट दिस, बिकॉज लोगों को अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस भी देखना है आज की तारीख में, उनको नहीं पता होता कि टाइम फ्रेम क्या रखना है। एक तो टाइम फ्रेम चार्ट कैंडल का, और दूसरा टाइम फ्रेम इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल ड्यूरेशन का।
तो मैं डेली और वीकली पे सपोर्ट निकाल लेता था, अगर दोनों लगभग मैच कर रहा है और स्टॉक भी गुड है, साउंड फाइनेंशियली है, तो मैं वहीं पर उसका सपोर्ट के आसपास ले लेता था। और तब भी लेकिन मैं स्टॉप लॉस तब भी नहीं लगाता था,
पता नहीं था
पता
इसलिए।
पता नहीं था मुझे, पता नहीं था, और मैं सोचता था ये स्टॉक तो ठीक है ही, देर सवेर आ ही जाएगा ऊपर।
अच्छा, तो आप के दिमाग में टारगेट प्राइस भी नहीं होता था कि कब निकलना है,
रेजिस्टेंस को ही उसका टारगेट लगा रखा होता था,
कि वहां तक आएगा, बस यहां पे गिरा है, यहां पे चढ़ा था, तो दोबारा तो करेगा ही।
दोबारा आएगा ये स्टॉक तो ठीक है, सोच के लेता था 15-20 दिन के लिए, महीने तक। अब वो अगर नीचे चला गया तो वो पड़ा है तो पड़ा है, स्टॉप लॉस में बेचना नहीं है,
फिर आप उस ट्रेडर की जगह आप इन्वेस्टर बन गए स्टॉक्स के।
उसमें इन्वेस्टर बन गए।
ओके, तो बट जनरली इफ वी कम टू टुडे, विल गो बैक टू द पास्ट एज वेल, तो एक टाइम फ्रेम जनरली क्या होना चाहिए अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हो तो?
एक अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो मिनिमम आप 7 दिन, 15 दिन, 30 दिन, ये नहीं कि आपने आज लिया तो कल बेच दिया, इस माइंडसेट से करोगे तो आपको कभी प्रॉफिट नहीं होगा। अगर आप 15 दिन, 20 दिन, महीने का सोचिए करते हो तो हो सकता है आपको अगले दिन भी प्रॉफिट मिल जाए।
ओके, तो 30 दिन का आपने अपना होल्डिंग पीरियड रखा, लेकिन जब आप टेक्निकल्स देखोगे तो आप जो चार्ट बना रहे हो या देख रहे हो, उसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस या जो भी स्ट्रेटेजी सेटअप बनाया हुआ है, मैं अभी के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस ही देख रहा हूँ, उन लोगों से बात कर रहे हैं अपन जो सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस देखते हैं, हालांकि उनको पता होना चाहिए कि ये इससे आगे जाना पड़ेगा उनको, लेकिन अगर सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस भी देखना है और अगर मैं एक स्विंग ट्रेडर हूँ और मेरा होल्डिंग पीरियड 30 दिन का है, अब मेरे को कितने समय का चार्ट देखना है एक तो ये, और मेरे हर कैंडल का टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए?
चार्ट तो आपने, अगर स्विंग ट्रेडर हैं तो आपको डेली का ही चार्ट लगाना है, डेली का ही टाइम फ्रेम देखना है आपने, वो देखना है, और जो कैंडल वगैरह हैं उस पर आपने फोकस करना है डेली की। उसको आप 15 मिनट या 4 आवर्स या टू आवर्स इस पे मत आओ अगर आप डेली के कर रहे हो तो।
डेली के लिए डेली का चार्ज देखना है मेरे को पिछले कितने दिनों का?
डेली का आप देख सकते हो पिछले छह महीने तक का।
पिछले छह महीने का, तो मैं छह महीने का ड्यूरेशन लगाऊंगा नीचे, और मतलब कि मान लो कि आज अगर जनवरी है तो मैं सेप्टेम्बर अक्टूबर से लेके जनवरी तक उस स्टॉक का प्राइस कैंडल्स के हिसाब से डेली के हिसाब से कैसे मूव हुआ है, और वहां से मैं
सपोर्ट वहां पर आप उसका सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं।
निकाल सकते हैं, ये एक बहुत बेसिक मिनिमम चीज है जो यहाँ से शुरू करना।
उसका साथ आप उसका वीकली भी देख सकते हो, वीकली आप साल दो साल का देख सकते हो। अगर दोनों डेली और वीकली सपोर्ट मैच कर रहे हैं तो आपको पता चल जाता है कि यहाँ पर एक मजबूत सपोर्ट है या मजबूत रेजिस्टेंस है।
पर इसके बेस पे आप डिसीजन नहीं ले सकते,
आप डिसीजन नहीं ले सकते,
है ना। दिस इज जस्ट फॉर यू टू गेट एन आइडिया ऑफ द स्टॉक। तो आपने एंट्री ही उसी बेस पे किया टेक्निकल्स में, अगर वो फंडामेंटली स्ट्रांग है।
फंडामेंटल स्ट्रांग है और सपोर्ट रेजिस्टेंस का। अब तक मुझे 2018-19 तक सिर्फ इसी बेस पे ट्रेडिंग कर रहा था।
ये चला आपके लिए?
हाँ ये चला मेरे लिए। ये था कि मैं अगर नीचे गिर भी जाता था स्टॉक, क्योंकि मुझे पता होता था कि ये स्ट्रांग स्टॉक है, तो मैं उसको रख लेता था, होल्ड कर लेता था। अब मार्केट जब रिकवर हो जाती थी उसके साथ वो भी रिकवर कर जाता, तो मैं प्रॉफिट में निकलता था।
हाँ, लेकिन ये कोई स्ट्रेटजी नहीं है ना, ये तो ऐसे ही है कि बस बाय कर लिया और अगर गिर गया तो मैं रुक जाऊंगा। तो प्रॉपर टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस ये कब पता लगा आपको कि ये भी लगाना होता है?
2019 में जब ये फादर की इनसे निकल गया मैं, उसके बाद 2020 में ये कोरोना का आ गया था, कोरोना का आया तो उस टाइम मेरे पास सारे घर में खाली बैठे थे, टाइम तो अब खूब था, अब पूरा दिन इसी पे लगे हुए हैं, कोई यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, कोई बुक पे देख रहे हैं, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक भी पढ़ी थी
पूरी,
बेंजामिन ग्राहम की
नहीं पूरी पढ़ी,
पूरी पढ़ी
समझ में आई,
पढ़ी और साथ में यूट्यूब बहुत सारे चैनल से देखे।
अब सोचते हो कि ये सारे में से कुछ ही देखने चाहिए थे?
बिल्कुल सोचते हैं, क्योंकि सब देख के तो और कंफ्यूजन होती है।
नहीं बट कुछ नहीं देखने चाहिए थे, ये भी था,
ये भी था।
कुछ लोगों ने मिसगाइड भी किया,
मिसगाइड भी किया।
अच्छा, और कुछ लोगों ने एजुकेट भी किया,
एजुकेट भी किया। कुछ लोगों का तो बाद में पता चला ये तो फेक स्क्रीनशॉट होते हैं इनके, जिनको अपना
घर मान लिया होगा। हाँ नहीं,
तब नहीं, बाद में पता चला
फेक स्क्रीनशॉट तो तब भी आएगा, आजकल तो क्लोनिंग ऐप भी आ गई है।
नहीं उस टाइम तो सिर्फ उनके वीडियो देखते थे, आज पता चला कि वो सारे फेक स्क्रीनशॉट
कर सकते हो एचटीएमएल में जाके या पीएनजी। ओके, तो आप हो गए आप भी फोमो के शिकार?
बिल्कुल,
फियर ऑफ मिसिंग।
उस टाइम मेरे पोर्टफोलियो में 2020 में 8-9 लाख का मेरा पोर्टफोलियो था, वो भी गिर के
दो थाई थी
9 लाख का, हाँ 4-5 लाख का रह गया था, 40-50% गिर गया था वो। हाँ तब तो मेरे को टेंशन हो गई, ये क्या हो गया।
आपने वो पोर्टफोलियो बनाया भी तो सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल पे था ना? अच्छा, ये पोर्टफोलियो भी उसी, ये वही सारे स्टॉक थे जो
जो
पोर्टफोलियो में बढ़ नहीं पाए थे?
हाँ उनका मैंने टारगेट भी रखा हुआ था कि इसको तो 50% ऊपर में बेचूंगा, वो 20% ऊपर चल रहे थे, वो भी 30-40% नीचे हो गए।
तो चलो सारी मार्केट ही, सारी दुनिया ही डाउन है, तो फिर तो होना ही था,
पूरी मार्केट ही
डाउन। बट देखो आपको इस बात का गम नहीं होगा कि यार मेरा एनालिसिस खत्म हो गया, मेरा एनालिसिस फेल हो गया, क्योंकि एनालिसिस तो आज बात करोगे तो एनालिसिस नहीं था वो ऐसे एक अंडरस्टैंडिंग,
वो तो एक तुक्का एक अंदाजा कर रहे हैं बस, एक ये पता है स्टॉक अच्छा है तो फिर चलो आ जाएगा, बस वो इसी सोच के साथ था।
नहीं फेयर इनफ, बहुत सारे 70-80% लोग इसी इसको ही पोर्टफोलियो कहते हैं। चलो 2020 में आपका कोविड का सामना खराब हुआ, जैसे कि बाकी के ट्रेडर्स का हुआ होगा, इन्वेस्टर्स का ज़्यादा, लेकिन कई इन्वेस्टर्स ने पैसा मार्केट में डाला भी होगा कि यार इतना सस्ते में मिल रहा है, आपके लेवल्स वो मिल गए होंगे आपको कि यार ये तो वाह, ये तो बीएससी क्या और ये क्या सब सस्ते में उल्टा उठा लो।
उस टाइम तो रिलायंस भी ले लिए थे मैंने, जब वो 800-850 का आ गया था तो मैंने उसको लीवरेज पे ले लिया था एमटीएफ पे।
ओके, तब से शुरू किया एमटीएफ?
तब से शुरू किया।
क्या होता है ये कॉन्सेप्ट
एमटीएफ? मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग। इसमें जैसे आपके पास जो कैश, अब कैश में जो करना चाहते हैं ट्रेडिंग, अब उनके पास इतनी कैपिटल नहीं होती, तो वो उसमें एक मिल जाता है कि ब्रोकर आपको लीवरेज दे देता है 3x, 4x। वो स्टॉक्स टू स्टॉक्स डिफर करता है, अब निफ्टी 50 वाले स्टॉक है उसमें आपको 75% फंडिंग मिल जाती है, उसके बाद मिड कैप वाले हैं उसमें आपको 70%, ऐसे स्मॉल कैप है 65%। तो उसमें आप ये है, जैसे आप फ्यूचर में ट्रेडिंग करते हैं तो आपका एक डेफिनेट पीरियड होता है कि आपको एक मंथ की एक्सपायरी होती है, और आपको एक लॉट भी पहले प्री डिफाइंड होता है, कोई 800 का लॉट है, 1000 का लॉट है। इसमें मार्जिन के अंदर आपको ये एडवांटेज मिल जाता है कि आप अपनी क्वांटिटी खुद डिसाइड कर सकते हैं, और आपको फंड वो लिवरेज भी मिल जाती है साथ में, तो आपको जो कैश की प्रॉब्लम होती है ना वो काफ़ी हद तक, हाँ बस इसमें यही होता है कि इंटरेस्ट जाता है, लेकिन इसमें जो आपको वो मिल जाता है ना कि आप क्वांटिटी अपने आप डिसाइड करते हैं, मेरी जो सोच के हिसाब से शेयर चल रहा है तो आप धीरे धीरे ऐड कर सकते हैं क्वांटिटी। मान लो मैंने 200 पे कोई स्टॉक लिया और मुझे पता है 240 तक मैंने इसका टारगेट रखा है, अब वो अगर मैंने मान लो फ्यूचर पे लिया है वो जैसे ही 200 से 195 190 जाने लगेगा तो आपको हो जाएगी मेरा इतना बड़ा लॉट है और उसको कैसे बेचूं। इसको आप पार्ट्स में बेच भी सकते हो, पार्ट्स में आप ले भी सकते हो, आपकी खुद की डिसाइड कर सकते हो। तो ये एडवांटेज मिल जाता है।
होल्डिंग पीरियड कौन डिसाइड करता
है? वो होल्डिंग पीरियड ब्रोकर का ही होता है, जैसे अब मेरा जो ब्रोकर है वो 1 साल का देता है होल्डिंग,
1 साल का इंटरेस्ट, ब्याज भी लगाता है आपको पैसे मिलने पे।
मेरा जो ब्रोकर है वो 9.65% चार्ज करता है।
मतलब कि अगर आपने 1,00,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया और मान लो कि वो 4x दे रहा है तो टोटल 4 लाख और मिला आपको।
जैसे मैंने 1 लाख 4 टाइम्स उस पर लिवरेज मिल रही है, तो मैंने 1 लाख का मान लिया, 1 लाख अपने लगाए तो 3 लाख उसने दे दिया, मैं 3 लाख उसने दे दिए तो मैं 4 लाख से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। अब मेरे को रिटर्न की एक्सपेक्टेशन है 10%, तो 4 लाख की मुझे 40,000 रुपये मिल गए रिटर्न, और वैसे मैं ले पाता 1 लाख का, उसमें 10% मेरे को मिलता।
पर आपको 3 लाख का 10% देना भी तो है, 9.9%।
हाँ लेकिन मैं उसमें ना MTF के अंदर उसी स्टॉक में जाते हैं जिसमें मोमेंटम हो।
ओके तो आप 10% के लिए नहीं खेल रहे हो?
हाँ उसमें मोमेंटम के लिए जाते हैं, मोमेंटम ट्रेडिंग की, आपको हफ्ता 10 दिन 15 दिन 20 दिन वो डेली के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज हो जाता है। अब 1 लाख पे मेरा जो ब्रोकर लेता है वो 26 रुपये डेली के चार्ज करता है। अब 10 दिन मैंने रखा उसके 260 रुपये और मेरे को 10% उस पर मिल गया 40,000, तो मेरे को क्या फ़र्क पड़ रहा है?
एक महीने में तो 10% नहीं मिलेगा आपको कि अच्छा उसे उठाया जो 10% आपको महीने में दे दे।
हाँ मोमेंटम वाले,
बट ऐसी अपॉर्चुनिटीज मार्केट में
बहुत अवेलेबल है। आप मेरा अभी इस साल का आप देखेंगे ज़्यादातर मैंने जो हफ्ते 10 दिन 15 दिन में मेरे को 10% 20% आराम से, बड़े आराम से मिला है।
गया भी होगा
इस साल तो बड़ा रेयर भी मेरे को लॉस हुआ है।